पृष्ठ संख्या 380। वेश परिवर्तन। वेश परिवर्तन कथा साहित्य की एक प्रिय कथानक रूढ़ी है। कथाओं में जोगी का वेश धारण करना बहुत प्रचलित है। हिंदी सूफी कहानियों में प्रायः नायक अपनी प्रिया की प्राप्ति के लिए योगी का वेश बदलकर प्रयास करते हैं। इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र का यह कथन उल्लेखनीय है। लोक भूमि का वह भाग जिसमें योग के चमत्कारों ने लोक कहानियों में परिणति पा ली थी, अपनी पृथक सत्ता रखता था। इसे सूफियों और प्रेम गाथाकारों ने ग्रहण किया। सूफियों की प्रेम गाथाओं में एक और जैन कहानियों के विद्याधरों के चमत्कारों की भी किंचित उपयोग है। वहाँ प्रत्येक कहानी में किसी न किसी रूप में जोगी या जोगी भी अवश्य आता है। यह योगी नाथ संप्रदाय के योगी का ही अवशेष है। 3. नायक ने बहुधा जोगी बनकर ही अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने की चेष्टा की है। 4. 3. उस्मान ने चित्रावली में ऐसे योगी को गोरख योगी के रूप में स्पष्टतः दिखाया है। आगे गोरखपुर भल देसु निबह सोई जो गोरख बेसु, जह तह मढ़ी गुफा बहु अहही, जोगी जति सनासी रहही, चारिह ओर जाप नित होई, चर्चा आन करे नहीं कोई, काऊ दोऊ दिस डोले बिकारा, कोऊ बैठ रह आसन मारा, काऊ पंच अगिन तथ सारा, काऊ लटकई रूखन डारा। उस्मान चित्रावली परेवा खंड छंद छाछठ। 4. डॉक्टर सत्येंद्र मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन, आगरा, सन 1960, पृष्ठ 67। पृष्ठ संख्या 381। कुतुबन कृत मृगावती में इसी परंपरा का पालन किया गया है। मृगावती के उड़ जाने के पश्चात राजकुमार उसके वियोग में योगी का वेश धारण कर बाहर निकल पड़ता है। कुतुबन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 88। कहीं कहीं नायिका भी अन्य रूप धारण करती है, जैसे मृगावती में नायिका मृगावती मृगी का रूप धारण करती है। वह बताती है, मृगी का रूप मैंने तुम्हारे लिए ही धारण किया था, दूसरी बार भी तुम्हारे लिए ही यहाँ पहुँची। मैंने एकादशी के पवित्र दिन पर ही तुमसे भेंट करने का संकल्प किया था। मृगावती कहा, सुनु राजा, तुम लगी मृग धरी हम छाया, हों पुनि तो ही लागी हों आई, सखी सहेली हों साथ लगाई। वही पृष्ठ 81। जायसी ने रत्न सेन को पद्मावती की प्राप्ति के लिए योगी बनाकर इस कथानक रूढ़ी के आश्रय से पद्मावत के काव्य सौंदर्य का संवर्धन किया है। हीरा मन के मुख से पद्मावती के बेजोड़ सौंदर्य का वर्णन सुनकर रत्न सेन उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है। उसके हृदय में प्रेम की चिंगी प्रकट होती है और फिर जोगी खंड में वह अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए राजपाट छोड़कर एवं जोगी का वेश बनाकर सिंघल द्वीप की राह लेता है। तजा राज राजा भा जोगी, अकिंगरी कर गहे उपयोगी। जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 53। मधुमालती में नायक मनोहर मधुमालती की खोज में निकलने के लिए रत्न सेन के समान योगी का वेश बनाता है। कठिन विरह दुख गाँव न संभारी, मांगेउ खप्पर दंड अधारी, चक्र माथ मुख भसम चढ़ावा, सवन फटिक मुंद्रा पहिरावा, उदपानी कसिके कर साटी, गुण की गरी बैरागी ठाटी। पृष्ठ संख्या 382। कंथा भेखली चिरकुटा, जटा परी सिरकेश, ब्रज कछौटा बांध किए गोरख का बेस। मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद, सन 1961, पृष्ठ 145-145। चित्रावली में कई स्थलों पर तपस्वी अथवा योगी वेश का उल्लेख हुआ है। सुजान चित्रावली को खोजने के लिए योगी का वेश ही धारण करके जाता है। इसके लिए उसका मार्ग प्रदर्शक उसे आज्ञा देता है। कुंवर अब आप संहारहु, राज काज कर साज उतारहु, काढ़ दंगल सुहावन राता, पहिरहु चिरकुट कंथा गाता, मणि कुंडल मकराकृत डारहु, फटिक मुंदरा श्रवण संवारहु, धोवहु चंदन भसम चढ़ावहु, किंगरि गहु वयोग वजावहु, तजहु सेल कर लेहु धंधारी, और सुमिरनि चेक्र अधारी, सिंगी पूरहु जटा बरावहु, खप्पर लेहु भीख जेहि पावहु, कांधे लेहु बाहि मृग छाला, गीम पहिरहु रुद्राक्ष क माला। उरहु कान जनि एक हु कहे को जो लख, पहिरी लेहु पग पावरी बोलहु श्री गोरख। किन्ह कुंवर जो जोगी कहा, देखत लोग अचंभव रहा। उस्मान चित्रावली, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, 1912, पृष्ठ 85। चित्रावली में कथा के आरंभ ही में शिव पार्वती साधु वेश धारण कर राजा धरनीधर के पास पहुंचते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। नायक सुजान नायिका चित्रावली की प्राप्ति के लिए तो योगी के वेश को अपनाता ही है, इसके अतिरिक्त चित्रावली भी नपुंसक भृत्यों को योगी वेश ही में भेजती है। इस प्रकार इस ग्रंथ में योगियों की अधिक चर्चा है। इसी प्रकार ज्ञानदीप में ज्ञानदीप योगी का वेश धारण करता है और नायिका की सखी सुज्ञानी योगिन का रूप अपनाती है। हंस जवाहिर में भी जवाहिर का नक्षिक वर्णन सुनकर हंस योगी होकर उसकी खोज में निकल पड़ता है। छाण देश भा योगी भेषु, बाढ़े केश विरह उपदेशु, सुमिरन हाथ लीन कर माला, कंथा पहिर लीन मृगछाला। पृष्ठ संख्या 383। मुद्रा लीन मंत्र हिय पूरी, खप्पर हाथ मेल सिर धूरी। कासिम शाह, हंस जवाहिर, अयोध्या, स्टीम प्रेस, 1898, पृष्ठ 169। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, इलाहाबाद, 1962, पृष्ठ 148-149। इंद्रावती में राजकुंवर इंद्रावती के हेतु जोगी होकर गृह त्याग करता है। छाड़ेउ कुंवर राज सुख भोगु, साधेउ आगम पुर को जोगु, भा जोगी इंद्रावती लागी, लीन्हा सारंगी अनुरागी। राजा दुकुल सब तुरत उतारा, जोग कांथरा कांधे डारा, राखा जटा चढ़ायो खेहा, कीन सनेह सनेही अदेहा। जावत जोगी रहा समाजा, तावत कीन्हा प्रेमी राजा, आठ मित्र राजा के पहिरा जोग दुकूल, सुख समाद को चिंता, गयउ चेत सो भूल। नूर मोहम्मद इंद्रावती, पहला भाग, जोगी खंड, पृष्ठ 22। अनुराग बांसुरी में भी अंतःकरण अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए योगी का वेश बनाता है। सूफी प्रेमाख्यानों में पात्र योगी के अतिरिक्त कोई अन्य वेश बदल लेते हैं, यथा कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप में इस प्राचीन कथानक रूढ़ी का सुंदर उपयोग किया है। नायिका देवयानी के पिता से विदा होकर जब ज्ञानदीप स्वदेश जा रहा होता है तो मार्ग में एक स्थान सुंदरपुर में विश्राम के हेतु ठहर जाता है। उस नगर में स्थित सरोवर, फुलवारी एवं हंस पंक्ति को देखने के लिए सुर ज्ञानी तथा देवयानी भी वहाँ जाती हैं और स्नान करती हैं। सुंदरपुर की स्त्रियां नगर में जाकर इन दोनों रूपवती नारियों की चर्चा करती हैं। चर्चा सुनकर नगर का राजा सुंदरसेन स्त्री रूप धारण करके सरोवर के निकट पहुंचता है और देवजानी को देखकर उसका पूर्व प्रेम जागृत हो जाता है। देवजानी के स्वयंवर में सुंदरसेन भी गया था। सुंदरसेन अवसर देखकर छल पूर्वक देवजानी को अपनाना चाहता है। पृष्ठ संख्या 384। भाषा प्रेम रस एक में नायिका चंद्रकला और नायक प्रेमसेन दोनों एक ही पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन दोनों में शनै शनै प्रेमोत्पन्न हो जाता है। जब चंद्रकला के पिता राजा रूपसेन को इसकी सूचना मिलती है तो वह अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए पाठशाला में जाने से रोककर एक प्रासाद में बंद कर देता है। प्रेमसेन चंद्रकला को पाठशाला में न पाकर बहुत दुखित रहने लगता है। वह अत्यंत दुर्बल तथा सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन हो जाता है। उसका एक मित्र बलसेन सारा हाल जानकर पुरस्कार आदि का प्रलोभन देकर अंतःपुर की मालिन मोहिनी के द्वारा प्रेमसेन का संदेश चंद्रकला के पास पहुंचा देता है। चंद्रकला प्रेमसेन को पत्र द्वारा मिलन का संदेश देती है और उसी रात्रि में प्रेमसेन नारी का रूप धारण करके चंद्रकला से मिलने जाता है। मोहिनी तथा मोहिनी की माँ दोनों उसके साथ जाती हैं। इस प्रकार प्रेमा और चंद्रकला का मिलन होता है। फारसी सूफी काव्य की सुप्रसिद्ध मसनवी मंतिकुत्तैर में वर्णित है कि लैला के कबीला वंश के लोग मजनू को अपने इलाके में नहीं आने देते थे। उस वन में एक चरवाहा रहता था। मजनू ने उससे एक खाल ली और उसे पहनकर भेड़ की भांति बन गया और उस चरवाहे से कहा, खुदा के लिए मुझे अपनी भेड़ों में शामिल कर लो। ताकि मैं इस झुंड में मिलकर एक घड़ी के लिए लैला की रूप सुषमा को देख लूं। अंततः मजनू उस खाल को धारण किए हुए भेड़ों के रेवड़ में सम्मिलित होकर अपनी प्रिया लैला के स्थान की ओर अग्रसर हुआ। आकिबत मजनू बजेरे पोस्त शुद्ध बारमा पिन्हा बकुए दोस्त शेद दो, अर्थात अंत में खाल में मजनू रेवड़ में सम्मिलित होकर अपनी प्रियतमा की ओर चल दिया। एक, भाषा प्रेम रस की कथा पर लैला मजनू की कथा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दो, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 226 पृष्ठ संख्या 385। मौलाना रूम की निम्न कथा में भी वेश परिवर्तन का सुंदर उदाहरण मिलता है। एक रात को सुल्तान महमूद भेष बदलकर निकला, संयोग वश वह चोरों की एक जमात के साथ शामिल हो गया। जब वह कुछ देर उनके साथ रहा तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि तूने बड़ा अच्छा किया जो हमारे साथ आ मिला, चलो किसी शाहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले यह निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी किस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाएं और ज़्यादा हुनरमंद हो उसे नेता बनाएं। यह सुनकर हर एक ने अपनी खूबियां बतलाईं। एक बोला, मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ, वे जो कुछ कहें उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन पड़ती है, यदि हम उनकी बोली जान ले तो हमारा खतरा कम हो जाएगा। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिस अंधेरे में देख लूं उसे कभी नहीं भूल सकता और दिन के देखे को अंधेरी रात में पहचान सकता हूं। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा दिया करते हैं, मैं ऐसे लोगों को तुरंत भांप लेता हूं, अपने साथियों को सावधान कर देता हूं और इस तरह हमारी रक्षा हो जाती है। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि पक्की पक्की दीवार में भी सेंध लगा सकता हूँ और यह काम मैं ऐसी फुर्ती और सफाई से करता हूँ कि सोने वालों की आंखें नहीं खुल सकती और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में गड़े धन को वहाँ की मिट्टी सूंघ कर बता सकता हूँ। लोग प्रायः धन को धरती ही में गाड़ कर रखते हैं, इस समय यह हुनर बड़ा काम देता है। पृष्ठ संख्या 386। पांचवे ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी ताकत है कि ऊंचे से ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो यह काम कर सके। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नए चोर से बोले कि तुम भी अपना कमाल जाहिर करो, जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब यह सुना तो कहने लगा, मेरी दाढ़ी में यह गुण है कि जब अपराधियों को जल्लाद के सुपुर्द करते हैं उस समय यदि मेरी दाढ़ी हिल जाए तो अपराधी मुक्त हो जाते हैं। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है, हम सब तेरी ही अधीनता में काम करेंगे ताकि कहीं पकड़े जाएं तो बख्शे जा सकें। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसा शक्तिशाली पुरुष हमें मिला। इस तरह सलाह करके ये लोग वहां से चले। जब बादशाह के महल के पास पहुंचे तो कुत्ता भौंका। पहले चोर ने कहा कि भाइयों, यह तो कहता है कि कोई बादशाह तुम्हारे आसपास है, मगर उनकी बात किसी ने न मानी। जब नेता आगे बढ़ता चला गया तो दूसरे चोर भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। बादशाह के महल के नीचे पहुंचकर सब रुक गए और वहीं चोरी करने का इरादा किया। दूसरा चोर उछलकर महल पर चढ़ गया और फिर उसने अन्य चोरों को भी खींच लिया और खूब माल लूटा, जिसके जो हाथ लगा समेटता गया। जब लूट चुके तो चलने की तैयारी हुई, जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपना अपना रास्ता लिया। बादशाह ने सबका नाम धाम पूछ लिया, चोर माल असबाब लेकर चंपत हो गए। बादशाह ने महल में पहुंचकर तुरंत मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अमुक स्थान में फौरन सिपाही भेजो और फला फला लोगों को गिरफ्तार करो। मंत्री ने झट से सिपाही भेज दिए, चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जो चोर रात के अंधेरे में देखकर दिन को पहचान सकता था उसने पृष्ठ संख्या 387 बादशाह को सिंहासन पर देखकर अन्य चोरों से कहा कि रात की फिराई में यह भी हमारा साथी था, वह स्वयं भी चांद की भांति रात को हमारे साथ था। अतः हाथ बांध कर कहा, एक गुप्त रूप में गश्त करने वाले बादशाह, अब वक्त आ पहुंचा है कि आप कृपया अपनी दाढ़ी हिलाएं। चोरों ने कहा, हम में से हर एक ने अपना कमाल दिखा दिया, यदि हम में से किसी का कमाल उपयोगी सिद्ध हुआ है तो वह उसी का है जिसकी आंख आपको पहचान गई। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ षष्ठ भाग कथा सात पृष्ठ 186। सुल्तान महमूद यह सुनकर मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी के इशारे से उन चारों की जान बचा दी। अंत में मौलाना रूम ने फरमाया है कि ज्ञान चक्षु के द्वारा ही दिव्य रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। वैद्य ओझा आदि को बुलाना। प्रेम का पीर परिपीड़ित तथा विरह से व्यथित नायक अथवा नायिका के लिए वैद्य ओझा आदि बुलाए जाते हैं। वैद्य नाड़ी परीक्षा करते हैं और बताते हैं कि रोग कुछ और है जिसका कोई उपचार नहीं। कभी कभी कोई धाय इस रहस्य का भी उद्घाटन करती है। हिंदी सूफी काव्य में इस कथानक रूढ़ी के भी दर्शन होते हैं। पद्मावत में राजा रत्नसेन पद्मावती का नक्षिक वर्णन सुनकर मूर्छित हो जाता है। वह प्रेम के अपार समुद्र में निमग्न हो जाता है। पद्मावती के विरह रूपी भंवर उसको चक्कर देते हैं और क्षण क्षण में उसके प्राण हिलोरे लेते हैं। उसासों के साथ उसके प्राण कंठगत हो जाते हैं और क्षण भर में वेग सहित बाहर निकलते हैं। प्रतिपल वह चेतना अवचेतना की अतलांत अविच्छिन्न धारा में डूबता उतराता है। राजा के कुटुंबी और नाती शीघ्र ही राजा के पास आते हैं। गुणी गारुड़ी ओझा वैद्य और चतुर लोग नाड़ी परीक्षा करके राजा के रोग से अवगत होने का प्रयास करते हैं। वे विचार विमर्श करके बताते हैं कि रोग असाध्य है। पृष्ठ संख्या 388। जहां लिख कुटुंब लोग अनेगी राजा राय आए सब वेगी जावत गुनी गारुड़ी आए ओझा वैद्य सयान बुलाए चरचही चेष्टा परिखही नारी नियर नाही औसद तह बारी। जैसी ग्रंथावली पद्मावत प्रेम खंड पृष्ठ 49। मंजन कृत मधुमालती में कवि ने इस कथानक रूढ़ी का अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। जब अप्सराएं राजकुमार को मधुमालती से वियुक्त करके उस शैया के साथ जिस पर वह सोया हुआ था उसके घर वापस पहुंचा देती हैं तो प्रातः जागाने पर वह मधुमालती के विच्छेद में विकल हो उठता है। उसकी यह दुर्वस्था देखकर उसकी सहजा नामक धाय व्याकुलता का कारण पूछती है। नैन उघारी देखी मुख कहसी उमी लय सांस मोहित जिय धाई पीर सो उपजी जाहि न ओखदी आस। मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 पृष्ठ 122। तदनंतर राजकुमार अपनी समूची दुखद वार्ता और करुण गाथा से धाय को अवगत कराता है। वह अपनी अनिवार्य विरोध पीड़ना से पछाड़ खाता है। राजगृह में क्लेशत कोलाहल सुनकर परिजन दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। उसकी माता कमलावती महावेदना से अपने वस्त्र फाड़ देती है और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ती है। वैद्य सयाने और गुणी आकर नाड़ी परीक्षा करते हैं और उन्हें व्याधि का कोई चिन्ह नहीं मिलता है। वैदन आई नाटिका पकड़ी देखी बिचारे नी पीर चांद सूरज दुवे निर्मल अगुण नाही शरीर। वही पृष्ठ 129। वे इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि राजकुमार को मर्म का रोग है। उठी निराश होई बहुरे पंडित गुनी सयान कुंवरही पीर पिरम के ओखदी को न जान। मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 पृष्ठ 130। उस्मान की चित्रावली में भी कुशल वैद्य नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कि राजकुमार को कोई रोग नहीं है। वह विरह घाव से छत विक्षत हैं। पृष्ठ संख्या 389। उत्सव समाप्त होने पर देव कुंवर को लेकर फिर मढ़ी में आ जाते हैं। प्रातःकाल जब सुजान की नींद टूटती है तो उसे पहले तो स्वप्न का भ्रम होता है परंतु कपड़ों में रंग लगा हुआ देखकर उसे सच्ची घटना का निश्चय हो जाता है और उसे चित्रावली की याद सताती है। इधर नेपाल देश के कुछ सेवक मढ़ी तक आ पहुंचते हैं और उसे इस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित होते हैं और उसे राज्य में ले आते हैं। वहां सुजान के माता पिता उसकी अवस्था को देखकर विकल हो जाते हैं। वे वैद्य आदि को बुलाते हैं। वैद्य सूचित करते हैं कि वह प्रेम की पीर से परिपीड़ित है। राज मंदिर महकुंवर उतारा जानहु आनी अगिन महडारा कल न परे पल अति बिकरारा हाथ पांव सिर दय दय मारा राजे ततखन जन दौराए वैद्य सयान गुनी लय आए गहि नाड़िका बूझहि पीरा नारी माह निर्दोष शरीरा शशि सूरज दोउ निर्दोषी अपने अपने घर संतोषी अब नाड़िका माह नहीं पीरा प्रगट पियर मुखशीन शरीरा। कहिन आव हम हिये विचारा, ई जस विरह घाव कर मारा। पीर सोई जो नहीं कछु औषध मूरी उपाय, एही कर हितु जो होई कोई सो पूछे फुसिलाए। उस्मान चित्रावली, काशी नागरी प्रचारणी सभा, सन 1912 ईस्वी, पृष्ठ 38। इंद्रावती में भी कई स्थलों पर वर्णित है कि प्रेम भाव पर मंत्र, यंत्र, तंत्र या किसी औषधि का प्रभाव नहीं होता। कही सब बात गई सब नारी, मर्मी साथ कहा धन प्यारी। जाके देह प्रेम दुख होई, औषध करे न पारे कोई। सुखी प्रेम के दुख का दुखी, प्रगट दुखी गुप्त है सुखी। नूर मोहम्मद इंद्रावती, पहला भाग, पृष्ठ 154। शेख रहीम ने भी भाषा प्रेम रस में इस कथानक रूढ़ी का व्यवहार किया है। चंद्रकला और प्रेम सेन एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, उनमें प्रेमोत्पन्न हो जाता है। गुरु विरत करने की चेष्टा करता है परंतु विफल रहता है, अंत में विवश होकर राजा को सूचित कर देता है। राजा इस पृष्ठ संख्या 390 सूचना से अत्यंत क्रोधित होता है और चंद्रकला को पाठशाला से उठा लेता है और पंचम महल में बंद कर देता है। प्रेम सेन चंद्रकला के अनुपस्थिति में परम पीड़ित होता है। वह सूख कर कांटा हो जाता है और समस्त सांसारिक सुखों से विमुख हो जाता है। उपचारार्थ वैद्य आदि बुलाए जाते हैं परंतु प्रेम रोग का उपचार कहाँ। प्रीति रोग जो रोगी होई, औषध लाभ देह का सोई। शेख रहीम, भाषा प्रेम रस। फारसी कथा साहित्य में भी वैद्य को बुलाने की एक चिर परिचित कथानक रूढ़ी है और फारसी सूफी काव्य में भी इस रूढ़ी का सुंदर विधान हुआ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी ए मानवी की सर्वप्रथम कहानी में उपर्युक्त कथानक रूढ़ी अत्यंत स्वाभाविक रूप से व्यवहित हुई है। एक बार बादशाह, जिसे दीन और दुनिया दोनों का प्रभुत्व प्राप्त था, अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। वह घोड़ा दौड़ाता फिरता था कि मार्ग में सहसा एक लावण्यमयी युवती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। वह शिकार करने गया था परंतु स्वयं शिकार हो गया। मुंह बोला मोल देकर बादशाह ने उस युवती को खरीद लिया और राजभवन में ले आया। कुछ समय के पश्चात वह अस्वस्थ हो गई। बादशाह ने आदेश दिया कि युवती के उपचार के लिए कुशल वैद्य एवं हकीम बुलाए जाएं। देश देशांतर के सुप्रसिद्ध वैद्य एकत्रित किए गए। उन्होंने बादशाह से कहा कि हम में से प्रत्येक हजरत मसीह मृतकों को भी जीवित कर देते थे की सी योग्यता रखता है। हम अपनी समूची शक्ति दवा दारू में लगा देंगे और उसको निरोग कर देंगे। यह सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने घोषणा की कि युवती को स्वस्थ करने वाले को वह असीम एवं अपार धनराशि से मालामाल कर देगा। उपचार आरंभ हुआ, औषधियां दी जाने लगी, परंतु रोग बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। दिन प्रतिदिन अवस्था विकृत होती गई। सिकंजबीन के पीने से पित्त बढ़ने लगा। पृष्ठ संख्या 391। रोगने बादाम से कब्ज हो गया। हरड़ का प्रभाव भी विपरीत पड़ा। पानी भी बजाय शांत करने के आग लगाने लगा। युवती हड्डियों की माला हो गई। वैद्यों की सारी शेखी किरकिरी हो गई। जब बादशाह ने भलीभांति देख लिया कि वैद्यों के बनाए कुछ नहीं बनेगा, तो वह रात्रि के समय नंगे पांव मस्जिद में पहुंचा। मस्तक नवाकर फूट फूट कर रोने लगा तथा अत्यधिक कारुणिक शब्दों में सिसकियां भरकर कहने लगा, हे संसार की इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले दयालु एवं कृपालु प्रभु, मैं तुमसे क्या कहूँ। तू तो स्वयं ही मेरे दिल की अवस्था से परिचित है। मेरे अभावों की पूर्ति करने वाले हे भगवान, मैंने तुझको छोड़कर विपरीत मार्ग स्वीकार कर लिया और वैद्यों का आश्रय ग्रहण किया। अब तू ही मुझ पर अनुकंपा कर। वह रोते रोते सो गया। प्रभु को उस पर दया आई। बादशाह ने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध महानुभाव उसे कह रहा था कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, कल प्रातः काल हमारा मुसाफिर आएगा, वह अत्यंत कुशल हकीम होगा। ज्यों त्यों करके उसने रात गुजारी। प्रातः काल हुआ तो सूर्य के उदय होते ही एक सूर्य के समान तेजस्वी महापुरुष उसे आते हुए दृष्टिगोचर हुआ। वह प्रकाश की साकार प्रतिमा के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुआ। बादशाह स्वागत के लिए आगे बढ़ा और द्वारपाल की भांति प्रणाम किया। बादशाह उससे इस प्रकार मिला जिस प्रकार शक्कर गुलाब की पत्तियों में घुल जाती है। एक तृषा था और दूसरा परितृप्ति, एक मद्यप था और दूसरा मदिरा। बादशाह ने महात्मा की सेवा शुश्रूषा में कोई भी कसर न छोड़ी। महात्मा ने अति प्रसन्न होकर बादशाह से कहा कि कोई इच्छा हो तो कहो। बादशाह ने इन अमृतमय शब्दों को सुनकर बड़े ही विनय से प्रार्थना की कि एक रोगी है, उसको कृपया स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। महात्मा ने युवती की नाड़ी परीक्षा ली। रोग के लक्षण आदि पूछकर महात्मा ने रोग को ताड़ लिया, क्योंकि प्रत्येक लकड़ी अपने धुएं से पहचानी जाती है। परंतु उसने बादशाह को इस हृदय के रोग से सूचित न किया। उसने बादशाह से केवल यही कहा कि उसे रुग्ण युवती से कुछ एकांत में पूछना है। अतः उसके आदेशानुसार बादशाह के साथ दूसरे सब कमरे से चले गए। पृष्ठ संख्या 392। जब सर्वथा एकांत हो गया तो महात्मा ने युवती से धीरे धीरे प्रश्न करने प्रारंभ किए कि तुम्हारा नगर कौन सा है और तुम्हारे नाती कौन कौन से हैं और उनमें से सबसे अधिक प्रेम किन से है। नाड़ी पर हाथ रखकर वह अनेक प्रश्नों के उत्तर सुनने लगा। युवती भी हकीम को पारंगत पाकर निसंकोच प्रत्येक रहस्य का उद्घाटन करती गई। जहाँ जहाँ वह बिकी और जिन जिन नगरों में रही, सब हाल उसने साफ साफ कह सुनाया। वह महात्मा क्रमशः उसकी राम कहानी सुन रहा था, परंतु उसका पूरा ध्यान उसकी नब्ज पर था। वह देखना चाहता था कि किसके उल्लेख पर नब्ज की गति में असाधारण वृद्धि होती है। संक्षेप में उसने एक एक नगर और एक एक मकान की घटनाएं सुनाई, परंतु चेहरे के रंग में कोई अंतर दृष्टिगत न हुआ और न नब्ज में कोई परिवर्तन प्रतीत हुआ। परंतु जब समरकंद नगर का वर्णन जबान पर आया तो उसने एक ठंडी आह भरी। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। तत्पश्चात उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने बताया, एक व्यापारी मुझे समरकंद में लाया और एक स्वर्णकार के हाथ बेच दिया। उसने मुझे 6 मास तक अपने पास रखा और उसके बाद आगे बेच दिया। जब वह स्वर्णकार के विषय में बता रही थी तो दुख की आग भड़क उठी। उसकी नब्ज की गति में तेजी आ गई और चेहरा पीला पड़ गया। महात्मा सब कुछ भांप गया। उसने स्वर्णकार का सब अता पता पूछ लिया। उसके बाद महात्मा ने युवती को दिलासा दिया कि अब वह शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएगी। उसने युवती से यह भी कहा कि वह सुनार विषय घटना बादशाह तक को भी न बताए, ताकि रहस्य बना रहे। फिर वह महात्मा रोगी के पास से उठकर बादशाह के पास आया और रुग्ण युवती का संतोषजनक कुछ हाल सुनाकर उसके जी का बोझ हल्का किया। बादशाह ने पूछा कि अब उपचार प्रारंभ करने में क्या विलम्ब है। महात्मा ने कहा कि उसके रोग का इलाज तो बस यही है कि समरकंद से एक स्वर्णकार तलब किया जाए और उसको पुरस्कार का लोभ दिया जाए और उसकी ओर अशर्फियाँ और बहुमूल्य वस्त्र भेजे जाएं, ताकि लालच में आकर वह अपना धंधा छोड़कर यहाँ आ जाए। बादशाह ने महात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दो बुद्धिमान, पृष्ठ संख्या 393, ईमानदार और शुभचिंतक अमीर रवाना किए। वे दोनों समरकंद पहुंचे और स्वर्णकार को बादशाह के निमंत्रण का शुभ समाचार सुनाते हुए कहा कि तेरे काम की कुशलता की चर्चा संसार भर में हो रही है और गहने बनाने में तेरा नाम निकला हुआ है। हमारे बादशाह ने गहनों की तैयारी के लिए तुझे अमीर बना देने का निश्चय किया है और अशर्फियाँ एवं सम्मानार्थ वस्त्र भेजे हैं। स्वर्णकार ने जब अपरिसीम धन को देखा तो फूला न समाया। उसने स्वदेश एवं निज परिवार को त्यागने की ठान ली। खुशी खुशी अश्वारूढ़ होकर प्रस्थान किया। जब वह बादशाह के पास पहुंचा तो उसने और भी सोना चांदी देकर उसे धनी मानी बना दिया। तब महात्मा ने बादशाह से कहा कि वह युवती को स्वर्णकार के पास रहने की आज्ञा दे, ताकि वे दोनों एक दूसरे से मिलकर आनंद के तार बजाएं। बादशाह ने सुंदरी को सुनार के सानिध्य में भेज दिया। अब दीपक और शलभ का पुनः समागम हो गया। इस प्रकार जब 6 मास तक दोनों को इकट्ठे रहते हो गए तो युवती पूर्णतया स्वस्थ हो गई। नायक या नायिका का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अप्सराओं आदि द्वारा ले जाया जाना। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में इस कथानक रूढ़ी का भी उपयोग हुआ है। मंजन कृत मधुमालती में इस कथानक रूढ़ी का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। जब राजकुमार मनोहर 14 वर्ष और 11 मास का होता है तो उसकी वह ग्रह दशा आ जाती है जो ज्योतिषियों ने बता रखी थी। 14 बरिस 11 मासा नवाए दिन पुनर्व परगासा, जन्म सूर सतए शशि सारा, मिले सजन कोई प्रेम पियारा। मंजन कृत मधुमालती, इलाहाबाद, पृष्ठ 43। एक दिन कुछ परदेशी नर्तक आते हैं जिनका नृत्य अर्धरात्रि तक होता रहता है। तदनंतर जब राजकुमार गाढ़ी निद्रा में सो जाता है तो कुछ अप्सराएं उसे देखती हैं और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसके उपयुक्त, पृष्ठ संख्या 394, किसी कन्या की खोज का निश्चय करती हैं। उनका ध्यान महारस नगर के राजा विक्रमराज की कन्या मधुमालती की ओर जाता है। वे राजकुमार को उसकी शैया के साथ वहां उठाकर ले जाती हैं, जहां मधुमालती शयन कर रही होती है। वहां दोनों शपथ लेते हैं कि वे जन्म जन्मांतर में प्रेम का निर्वाह करेंगे। तत्पश्चात अप्सराएं कुमार को उस शैया के साथ जिस पर वह सो रहा होता है उसके घर वापस पहुंचा देती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, इस मधुमालती में अप्सराएं राजकुमार को उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में ले आती हैं और वहीं से दोनों के प्रेम का आरंभ होता है। भारतीय साहित्य में उषा और अनिरुद्ध की कहानी में नायक को नायिकाओं के घर पहुंचाए जाने की कथा शैली पाई जाती है, परंतु यह भी बाणासुर नामक असुर राज की राजकुमारी की कथा है और विद्वानों का विचार है कि इस कथा के कथानक शैली को भारतीय की अपेक्षा असीरियन कहना अधिक उचित है। यह कहने की शायद आवश्यकता नहीं है कि सभी असीरियन काव्य शैलियाँ और काव्य रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य में गृहित हो गई थीं और फारसी कवियों के माध्यम से भारतवर्ष में भी मध्ययुग में आने लगी थीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, देहली, 1955 ईस्वी, पृष्ठ 238। उस्मानकृत चित्रावली में एक बार राजकुमार सुजान मृग्या के पश्चात जब घर लौटता है तो आंधी के कारण मार्ग भूल जाता है और हार कर एक पर्वत की मढ़ी में जा सोता है। वह एक देव का स्थान होता है। देव अपने देश के राजा के एकमात्र पुत्र की रक्षा के हेतु मढ़ी के द्वार पर बैठ जाता है। इसी समय देव का एक मित्र आता है और रूपनगर के चित्रावली के वर्षगांठ के उत्सव का अत्यंत आकर्षक वर्णन करके उससे भी चलने के लिए कहता है। वे कुमार को भी साथ ले उड़ते हैं और उसे चित्रावली की चित्रसारी में सुलाकर स्वयं उत्सव देखने में संलग्न हो जाते हैं। वहां राजकुमार की आंख खुलती है, वह चित्रावली का एक चित्र देखता है। राजकुमार अपना भी एक चित्र उसके चरणों के पास बना देता है, पृष्ठ संख्या 395, और फिर निद्रा के वशीभूत हो जाता है। उत्सव समाप्त हो जाने पर देव कुमार को लेकर मढ़ी में आ जाते हैं। प्रोफेसर शिव सहाय पाठक के शब्दों में, चित्रावली में देव ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि वह सुजान को वहां न ले जाता तो कथानक ही न होता। प्रोफेसर शिव सहाय पाठक, पद्मावत का काव्य सौंदर्य, बम्बई, 1953, पृष्ठ 54। शेख नबीकृत ज्ञानदीप में मंत्राभिषिक्त घोड़ा नायक ज्ञानदीप को नायिका देवजानी के पास उसके प्रासाद की छत पर उड़ा कर ले जाता है। जब नायिका ज्ञानदीप के विरह में तिल तिल कर घुलने लगती है तो उसकी सखी सुरज्ञानी कागज का मंत्र कीलित एक घोड़ा बनाकर पार्वती की कृपा से उसे जीवन दान दिलाती है। यह घोड़ा ज्ञानदीप को कई दिन महल की छत पर उड़ा कर ले जाता है और उसे कुटी में वापस ले जाता है। कवि कासिम शाह कृत हंस जवाहिर में जब नायक हंस एक पहाड़ पर सो रहा होता है तो परियां उसे वहां से उठाकर ले जाती हैं और दिनौर कोऊ देश के भोला शाह का पुत्र, जिसके साथ जवाहिर के पिता ने अपनी राजकन्या जवाहिर का विवाह निश्चित किया था, को सजी सजाई बारात से उठाकर ले जाती हैं और हंस को उसके स्थान पर बिठा आती हैं। इस प्रकार वस्तुतः हंस और जवाहिर का विवाह सम्पन्न हो जाता है। वे दोनों जब सो जाते हैं तो परियां फिर हंस को वहां से उठाकर ले जाती हैं और उसके स्थान पर दिनौर को लिटा आती हैं। शेख रहीम कृत भाषा प्रेम रस में नायिका चंद्रकला को रात्रि के समय एक दैत्य महल से सोती हुई उठाकर ले जाता है और उसे एक पर्वत पर, जहां उसके 40 घर थे, जाकर उतारता है। कामरूप की कथा में जब नायक कामरूप रात्रि के समय शयन कर रहा होता है, चंद्रमुख नामक परी उस पर आसक्त हो जाती है और कामरूप को ले उड़ती है। डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013, विक्रम, पृष्ठ 576। पृष्ठ संख्या 396। फारसी सूफी काव्य के प्रख्यात सूफी कवि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की सुप्रसिद्ध मसनवी मंतिक उत्तैर की निम्न कहानी, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, मंतिक उत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 255-260 में उक्त कथानक रूढ़ी का प्रयोग द्रष्टव्य है। एक बादशाह समस्त संसार पर राज्य करता था। उसके महल में उसकी एक कन्या थी। अपनी सुंदरता के लिए वह परियों को भी मात करती थी और हजरत यूसुफ का सा सौंदर्य रखती थी। उसके चेहरे पर चाहे जनखदान, चिबुक कूप फारसी की कवि, चाहे जकन या चाहे जनखदान ठोड़ी का गड्ढा को सुंदरता का विशेष चिन्ह समझते हैं। रूप सुषमा को द्विगुणित करता था। उसकी जुल्फों अलकों पर हजारों के दिल घायल होते थे और उसके प्रत्येक केश में एक न एक प्रेमी के प्राण अटके हुए थे। उसकी भ्रिकुटियां कमान के समान थी जिससे निरंतर कटाक्षों के तीरों की वर्षा होती रहती थी। उसके नरगिस पुष्प से नयन बुद्धिमानों को चकित कर देते थे। अज़रा अरब देश की एक प्रसिद्ध सुंदरी का नाम है जिस पर वामिक आसक्त हुआ था। जैसी रूपवती और ऊषा जैसी सुंदरी वह राजकुमारी चांद को लज्जित कर देती थी। उसके दांत मानो याकूत की डिबिया रत्नों का संपुट थी जो मानस के भीतरी स्तरों को उद्भाषित करते थे। जब वह हंसती थी तो उसके होंठ आबे हयात अमृत से प्रतीत होते थे। उस बादशाह के दरबार में एक चांद सा मनोहर गुलाम था। वह अपूर्व सौंदर्यवान था। उसको ईश्वर ने इतना सौंदर्य प्रदान किया था जितना कि रवि और शशि को भी प्राप्त नहीं। उसे देखकर लाखों पुरुषों की आंखें चुंधिया जाती थी। एक दिन सहसा राजकुमारी ने उस गुलाम को देख लिया। देखते देखते वह अपना हृदय खो बैठी। उसे अपनी सुध बुध न रही। वह प्रेम से सर्वथा वशीभूत होकर छटपटाने लगी और उसकी अधीरता चरम सीमा तक पहुंच गई। वह गुलाम के प्रेम और विरह में तिल तिल घुलने लगी। इस व्यथा में उसके दिल में प्रेम और भी बढ़ने लगा। उसके मनोविनोद के लिए पृष्ठ संख्या 397 10 पारंगत गायिकाएं नियुक्त कर दी गईं जो परियों के सदृश रूपवती थीं। ये हर समय बुलबुल के सदृश चहकती रहती थीं। राजकुमारी ने अपने प्रेम की चर्चा उनसे की। उसने अपनी प्रतिष्ठा और लज्जा ताक पर रख दी। प्रेम की पीर व्यक्त करने के पश्चात राजकुमारी ने यह भी कहा कि यद्यपि उसने धैर्य पर सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं तथापि अब वह धीरज धारण नहीं कर सकती। वह उस गुलाम के इश्क में जलकर पतंगा हो रही है। यदि उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए और गुलाम उसके पास आ जाए तो वह अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। जब गायिकाओं ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम रात्रि के समय सबसे छिपा कर गुलाम को उसके पास लाएंगी और किसी को उसका पता तक न चलेगा। उनमें से एक गायिका गुलाम के पास गई और उससे कहा कि एक शराब का प्याला लाओ। उसने शराब में बेहोशी की दवा डाल दी। जब गुलाम ने प्याला पिया तो वह बेहोश हो गया। इससे सुंदर गायिका का काम बन गया। गुलाम सुबह से शाम तक बेहोश पड़ा रहा और उसे दुनिया की कुछ खबर न रही। रात्रि के समय दो रूपवती गायिकाएं गुलाम के पास पहुंची। वे गुलाम को एक खटिया पर लिटाकर गुप्त रूप से राजकुमारी के पास ले गईं। वहां उसको सोने के सिंहासन पर बिठा दिया और उस पर जवाहरात न्योछावर किए। आधी रात के समय मस्त गुलाम ने अपनी आंखें खोली। उसने स्वर्ग सा महल देखा जो सुसज्जित एवं सुगंधित था। उन लावण्यमयी दासियों ने सहगान प्रारंभ किया। इस अवसर पर राजकुमारी खुशी में फूली न समाती थी। वह सुदभुत खो बैठी। उसका प्रेम चरम सीमा तक पहुंच गया। उसकी आंखें गुलाम के चेहरे पर लगी हुई थीं और कान गाने की ओर आकृष्ट थे। इस अवस्था में राजकुमारी ने गुलाम को शराब का प्याला दिया और नुक्ल वह चीज जो मदरा पान के पहले खाई जाए के रूप में गुलाम का चुंबन किया। गुलाम की आंखें राजकुमारी के चेहरे पर गड़ी हुई थीं और वह आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर रह रहकर ताक रहा था। वह वाणी द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ था। उसकी जबान बंद हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का तार बंधा हुआ था। वह रूपवती राजकुमारी भी पृष्ठ संख्या 238 फूट फूट कर रो रही थी। वह कभी गुलाम के होठों का चुंबन करती थी, कभी उसकी जुल्फों को बिखेरती थी और कभी उसकी मोहनी आंखों में गुम हो जाती थी। वह मस्त गुलाम राजकुमारी के सम्मुख बुत बनकर चुप्पी साधे हुए था, मानो उसकी बोलती मारी गई हो। जब गुलाम को नींद आ गई तो गायिकाएं उसे उठाकर वहां से ले गईं और उसे उसी स्थान पर पहुंचा आई जहां से लाई थीं। जब उस गुलाम को होश आया तो उसके मस्तिष्क में एक खाका सा शेष था, परंतु उसे खबर नहीं थी कि उस पर क्या बीती। प्रातः वह अशक्त सा हो गया। उसने सिर पर पानी डाला। हाथ मारकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, फिर बाल नोच लिए और सिर पर धूल डाली। उससे लोगों ने इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, इस बात को मैं बता नहीं सकता। जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा है वह कोई स्वप्न में भी नहीं देख सकता। जो कष्ट मुझ अकेले को झेलना पड़ा, आज तक किसी को वैसा नहीं उठाना पड़ा। जो कुछ मैंने देखा है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इससे अद्भुत घटना कोई व्यक्ति भी नहीं देख सकता। लोगों ने कहा, भाई होश की दवा लो, थोड़ा बहुत कुछ तो बताओ, 100 बातों में से एक बात तो कहो। गुलाम ने कहा, मैं पीर से परम दुखी हूँ। भला कभी कोई दीवाने की बातों पर भी जाता है? मैंने सब कुछ सुना है परंतु कुछ भी नहीं सुना। मैंने सब कुछ देखा है परंतु कुछ भी नहीं देखा। इससे अधिक विचित्र दशा किसी की नहीं हुई होगी। न मैं कुछ कह सकता हूँ, न मूक रह सकता हूँ। मैंने एक ऐसे रूप को देखा है जो सौंदर्य में बेजोड़ है। उसके चेहरे की तुलना में सूर्य भी मंद पड़ जाता है। यद्यपि मैंने इससे ज़्यादा देखा है, तथापि कुछ ज्ञात नहीं कि मैंने उसे देखा भी है या नहीं। देववाणी। भारतीय कथा काव्यों में देववाणी एक की रूढ़ी का बहुत प्रयोग हुआ है। एक, कुछ आलोचकों का विचार है कि महाकाव्य के पात्रों का संपर्क देवता से रहता है और उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और भाग्य का हाथ रहता है। श्यामचंद्र सुमन, साहित्य विवेचन, दिल्ली, 1952, पृष्ठ 77, पृष्ठ संख्या 399। हिंदी सूफी कवियों ने भी इस कथानक रूढ़ी का अवलंबन लिया है। पद्मावत में शिव मंदिर में देववाणी कराई गई है। सिंघल द्वीप में उतर कर जोगी रत्नसेन और उसके 30,000 साथी महादेव के मंदिर में ठहरते हैं। हीरामन पद्मावती से भेंट करने जाता है। पद्मावती के दर्शन की अभिलाषा से राजा मंडप के चारों ओर परिक्रमा करके दंडवत करता है और सच्चे हृदय से स्तुति करता है। पूजनोपरांत देववाणी होती है। कह स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप मह आवा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही तकाह छार भरी मूठी। प्रेम ही माह बिरह रस रसा, मैन के घर मधु अमृत बसा। निसत धाई जो मरे तकाहा, सत जो करे बैठ तेही लाहा। एक बार जो मन दे सेवा, से वही फल प्रसन्न होई देवा। जायसी ग्रंथावली पद्मावत मंडप गमन खंड पृष्ठ 71। इस प्रकार इंद्रावती के जोगी खंड में भी कवि नूर मुहम्मद ने उक्त कथानक रूढ़ी का सुंदर प्रयोग किया है। आगमपुर में पहुंचकर राजकुमार शिव मंदिर में गौरीपति के ध्यान में मग्न हो जाता है। एकाग्र होकर ध्यान करने से उसके हृदय में ज्ञानोदय का आरंभ होता है। तत्पश्चात आकाशवाणी होती है कि प्रेमपुर में स्थित इंद्रावती की फुलवारी में चेता नामक मालिन के सहयोग से उसे इंद्रावती के दर्शन प्राप्त होंगे। मन के पूर्ण चेतन होने पर सजग होकर आराध्य की आराधना से उसके दर्शन संभव हैं। जब महेश कह बहुत मनावा, सबद एक मंडप सो आवा। प्रेम पूर पूरा है जहां, रानी की फुलवारी है तहां। तेहिक नाम है फुलवारी, थिरहु जाई तेहि बीच भिखारी। वही फुलवारी लेहु बसेरा, मिले दरस इंद्रावती केरा। कवि नूर मोहम्मद इंद्रावती, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी, पृष्ठ 33। फारसी काव्य में वही या इल्हाम, प्रभु का संदेश भिजवाना, दिव्यवाणी आदि का बहुत उल्लेख हुआ है। हजरत मूसा के संबंध में प्रसिद्ध है कि उन्हें दिव्यवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पृष्ठ संख्या 400, उन्होंने ईश्वर से बातचीत भी की थी। इसलिए हजरत मूसा को कलीमुल्लाह, प्रभु से वार्तालाप करने वाला भी कहते हैं। कुरान में वर्णित है कि हजरत मूसा ने ईश्वर से बातचीत की थी। एक, इस बातचीत का उल्लेख प्रायः सभी फारसी कवियों ने किया है। फारसी सूफी काव्य में प्रायः हजरत मूसा एवं अन्य सूफियों को प्रभु का संदेश सुनते हुए वर्णित किया गया है। उदाहरणार्थ एक कथा देखिए, इसमें दाढ़ी बाह्य डंबर का प्रतीक है। यह कथा मंतिकुत्तैर में इस प्रकार उल्लिखित है। एक विरक्त हजरत मूसा के समय में अहर्निश नमाज पढ़ा करता था, परंतु उसे तनिक भी संतोष नहीं होता था। उसकी दाढ़ी बहुत सुंदर थी, वह प्रायः अपनी दाढ़ी में कंघी किया करता था। उस विरक्त ने एक रोज हजरत मूसा को दूर से देखा। उसने पास जाकर कहा कि ए तूर दो पर्वत के सरदार, मैं आपका आभारी होऊंगा यदि आप खुदा से पूछ दें कि मुझे साधना में आनंद क्यों नहीं आता। संक्षेप में, जब हजरत मूसा तूर पर्वत पर गए तो खुदा से यह बात पूछी। दिव्य वाणी हुई, गोजे दर्दे वसले माँ दरवेश मांदा, दायमा मशगूले रीशे खेश मांदा। 3:1 कुरान में लिखा है कि जब मूसा निश्चित समय पर पहुंचा, उसके रब ने उससे वार्तालाप किया। मूसा ने कहा, ए रब, तू मुझे अपने आप को दिखा ताकि मैं आपके दर्शन करूं। रब ने फरमाया, तू मुझे कदापि न देख सकेगा, परंतु पर्वत की ओर देख, यदि वह अपने स्थान पर स्थित रहा तू मुझे देख सकेगा। फिर जब उसका रब पर्वत पर प्रकट हुआ तो पर्वत का कुछ हिस्सा टूक टूक हो गया और मूसा अचेत होकर गिर पड़ा। कुरान संख्या 7:143। 2. वह पर्वत जिस पर हजरत मूसा की ईश्वर से बातचीत हुई। 3. ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 201 पृष्ठ संख्या 401। अर्थात यद्यपि यह साधक हमारे मिलन के दुख में मरा जाता है तथापि उसका दिल सदा दाढ़ी में उलझा हुआ है। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में कई स्थलों पर आकाशवाणी की चर्चा की है। 2 उदाहरण देखिए। आकाशवाणी हुई, मूसा मैं अस्वस्थ हुआ परंतु तू मेरी पूछताछ के लिए न आया। मूसा ने कहा, हे पावन एवं पवित्र परम प्रियतम, तू तो रोग व्याधि आदि से मुक्त है, तेरे इस गिला में क्या रहस्य है मुझे स्पष्ट कर। फिर दिव्यवाणी हुई, हाँ मैं रुग्ण हुआ और तू परिपृक्षा के लिए न आया। मूसा ने कहा, ए रब, तुझ में तो कोई घटाव नहीं, तेरे सवाल से मेरी अक्ल गुम हुई जाती है, मेरी इस गुत्थी को सुलझा। खुदा ने कहा, मेरा अमुक विशेष भक्त बीमार हुआ, वह मैं ही तो था। गुफ्त आरे बंदा ए खास गुजी, गश्त रंजरो मनग नेकश बबी। मसनवी मौलवी मानवी पराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ 1947 द्वितीय भाग पृष्ठ 146। अर्थात रब बोला, सच है खास बंदा इक मेरा, हो गया बीमार वह मैं ही तो था। अंत में खुदा ने फरमाया, हर की खाहद हम निशीनी बा खुदा, ओ निशीनद दर हुजूरे औलिया। वही पृष्ठ 146। अर्थात हम नशीनी सानिध्य चाहे जो अल्लाह से, औलिया की वह हजूरी में रहे। मसनवी की एक अन्य कथा का आरंभ इस प्रकार है। एक बार एक युवक ने हजरत मूसा से जीव जंतुओं की बोलियां सिखाने पृष्ठ संख्या 402 के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि जीव जंतुओं की भाषा ही से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य की सारी जबाने तो छल छंद ही के कामों में लगी रहती हैं। पहले तो हजरत मूसा ने सुनी अनसुनी कर दी, परंतु जब उसने हट पकड़ी तो हजरत मूसा ने कहा कि सर्वप्रथम ईश्वर का आदेश लूंगा। संक्षेप में दिव्यवाणी हुई, वफत यजदा की बदेह बाईस तऊ, बर कुशा दरे इख्तियारे आ देस दस तेऊ। मसनवी मौलवी मानवी पराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ 1947 तृतीय भाग पृष्ठ 226। अर्थात ईश्वर ने कहा कि उसको यथा योग्य सिखा दे, उस पर बोलियों के ज्ञान के द्वार उन्मुक्त कर दे। अतः हजरत मूसा ने उसे कुत्ते एवं मुर्गे की बोली सिखा दी। प्रेम पत्र। प्रेमियों तथा प्रेमिकाओं द्वारा पत्र लिखना भी एक पुरानी रूढ़ी है। यह भारतीय वांग्मय ही में नहीं फारसी साहित्य में भी मिलती है। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में भी इस कथानक रूढ़ी के दर्शन यत्र तत्र होते हैं। पद्मावत में प्रेमी तथा प्रेमिका के मध्य कोई पत्र व्यवहार तो नहीं होता, परंतु प्रेमिका पद्मावती मूर्छित प्रेमी रत्नसेन के वक्षस्थल पर अपना संदेश लिखती है। वसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के साथ मंडप में जाती है। वह उधर भी जाती है जिधर रत्नसेन और उसके साथी योगी होते हैं। ज्यों ही रत्नसेन की आंख उस पर पड़ती है वह मूर्छित हो जाता है। वह मूर्छित योगी के पास जाती है और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़कती है, परंतु विफल रहती है। तत्पश्चात वह चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर चली जाती है, जोगी तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा, जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। पृष्ठ संख्या 403। तब चंदन आखर हिय लिखे, भीख ले तुई जोग न सिखे। घरी आई तब गातू सोई, कैसे भुगति परापति होई। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 84। इंद्रावती में भी इंद्रावती राजकुमार के दर्शनार्थ वाटिका में जाती है। इंद्रावती के वदन पर एक लट को देखकर राजकुमार मूर्छित हो जाता है। परी वदन पर लट सटकारी, तपि देवस भानिस अंधियारी। नूर मोहम्मद इंद्रावती फुलवारी खंड पृष्ठ 60। जब प्रयास करने पर भी राजा को चेत नहीं होता है तो इंद्रावती एक पत्र में जीव कहानी नामक कथा रूपक को लिखकर छोड़ जाती है। जीव कहानी लिख के राखी चली तही पास, छोड़ तपी को आई जहां सदन सुख बास। नूर मोहम्मद इंद्रावती जीव कहानी खंड पृष्ठ 64-69। राजकुंवर जीव कहानी नामक उपदेश पूर्ण कथा का मर्म नहीं समझ सकता है। संयोग वर्ष उसी समय उसका मंत्री बुद्धसेन उसके निकट आ पहुंचता है और वह जीव कहानी के कथा रूपक को राजा के प्रति स्पष्ट करता है। उसके पश्चात पाती खंड में राजकुंवर तथा इंद्रावती के मध्य पत्र व्यवहार आरंभ होता है और चेता संदेश वाहक का कार्य करती है। वही पृष्ठ 69-78। धन पाती चेता ले आई, राजा मन अभिलाष बढ़ाई। नूर मोहम्मद इंद्रावती जीव कहानी खंड पृष्ठ 77। इसके बाद भी जब तोता आकर इंद्रावती को राजा के बंदी होने का समाचार सुनाता है तो वह एक पत्र द्वारा कृपा नामक राजा की सहायता से उसके मुक्त होने का उपाय लिख कर भेजती है। रोवत आंसू रकत को इंद्रावती छबिरास, पाती बांधी सुवा के भेजा प्रीतम पास। वही पृष्ठ 89। अनुराग बांसुरी में अंतःकरण के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर पृष्ठ संख्या 404 सर्व मंगला को उसका रूप देखने की उत्कंठा जागृत होती है। वह अपनी सखी चित्रबंधिनी को अंतःकरण का चित्र लाने के लिए भेजती है और चित्र पाने पर उपदेशी सुए के कहने से अपना चित्र भी उसके हाथ कुंवर के पास भेजती है। चित्र दर्शन के अनंतर फिर दोनों का पत्र व्यवहार चलता है। अनुराग बांसुरी प्रयाग पत्री खंड पृष्ठ 171-176। रहीम कृत भाषा प्रेम रस में प्रेम सेन और चंद्रकला दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। उनमें शनै शनै प्रेम उत्पन्न हो जाता है। गुरु चंद्रकला के पिता राजा रूप सेन को सूचित कर देता है। राजा चंद्रकला को पंचमहल में बंद कर देता है। प्रेम सेन जैसे तैसे अंतःपुर की मालिन मोहिनी के द्वारा अपना संदेश चंद्रकला तक पहुँचाने में सफल होता है। चंद्रकला प्रेमा को पत्र द्वारा मिलन का संदेश भेजती है। फारसी साहित्य में मौलाना निजामी गंजवी एवं अमीर खुसरो के काव्यों में लैला और मजनू द्वारा एक दूसरे से पत्र लेखन की प्राचीन रूढ़ी उपलब्ध होती है। निजामी लैला मजनू नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1880 पृष्ठ 72-73। अमीर खुसरो लैला मजनू अलीगढ़ 1918 पृष्ठ 99। फारसी सूफी कवि ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार ने उपर्युक्त कथानक रूढ़ी का उपयोग करते हुए यह हृदयंगम कराया है कि प्रेम का मार्ग अति कठिन है। इस कथा की प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। आशिके अस्फरते इश्क अश्फुता बुद, बरसरे खाके बजारे खुफ्ता बुद, रफ्त माशुकश बबाली नश फराज, दीद उरा खुफ्ता ओजे खुद रफ्ता बाज, रुका ए वनविष्ट चुस्तो लाए के ऊ, बस्त आबर आस्तीने आशिके ऊ, आशिकश अस्खा बचू बेदार शुद, रुका बरखांदो बरु खुमार शुद। ख्वाजा अत्तार मंती कुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 238 पृष्ठ संख्या 405। अर्थात एक प्रेमी प्रेम के मारे रोता रोता भूमि पर सो गया। उसका प्रियतम उसके सिरहाने आया और उसे घोड़े बेचकर सोते हुए पाया। उसने एक उचित और प्रभावी पत्र लिखा और उसे प्रेमी की आस्तीन बाही पहनने के कपड़े का वह भाग जो बांह को ढकता है से बांध कर चला आया। जब प्रेमी सोकर उठा तो उसने पत्र पढ़ा, जिसे पढ़कर परम दुखी हुआ। पत्र में लिखा था, हे प्रेमी, यदि तू व्यापारी है तो खड़ा होकर लाभ उठा, यदि तू विरक्त है तो आराधना कर और जागता रह, यदि तू प्रेमी है तो लज्जा से कट जा, क्योंकि प्रेमी को सोने से क्या मतलब। प्रेमी तो दिन भर खाक छानता है और रात को चांद के साथ साथ चलता है। यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो प्रेम की डींग न मार, यदि कोई प्रेमी सिवाय कब्र में सोने के कहीं और सो जाए तो उसे अपने आप ही पर आशिक कहना चाहिए। वस्तुतः तू प्रेम के योग्य नहीं है, अतएव खूब निश्चिंत होकर सोता रहे। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, मंतिकुत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 238।